लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने जीवन में निश्चित ही एक दूसरे के प्रति ना समझी के शिकार हुए हैं। एक दूसरे के प्रति हुई ना समझी के कारण कई बातों पर हमने अपने को समस्याओं में उलझता हुआ पाया होगा। मानवीय जीवन की सच्चाई या कहें हकीकत यही है, जहां तक हमारा यह जीवन है, हम अपने में एक बार नहीं बल्कि कई बार इस नासमझी का शिकार अपने को होता पाएंगे। इस भांति हमारी नासमझी में गलती कर बैठना हमारे मानवीय स्वाभाविकता का अंग है, जो शायद हमारे लिए सतर्कता और अपनी वार्ता के माध्यम सुलझाया जा सकता है। श्रोताओं, ख्रिस्त जयंती के उपरांत पवित्र परिवार के पर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में योसेफ और मरियम के बीच हम एक नासमझी की स्थिति को पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि 12 बरस का बालक येसु यरूशलेम मंदिर में ही छूट जाता है और वे उसे दुख से भरे 3 दिनों के बाद पुनः यरूशलेम लौटने पर पाते हैं। आइए हम पवित्र परिवार हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए स्वयं अपने हृदय का अवलोकन करते हुए इस बात की जांच करें कि हमारे बीच आपसी नासमझी की स्थितियां किन कारणों से उत्पन्न हुई होंगी। हमने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? क्या उस नासमझी के लिए हम एक दूसरे को दोष देते और भला बुरा कहते रहे हैं? क्या हमने उस गलती को स्वीकारते हुए एक दूसरे से उचित रूप में पेश आया है?
ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वह यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनसे बातें करते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने उन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन के नासमझी भरे क्षणों में अपनी ओर से हुई गलती को स्वीकारने और वहीं दूसरों को भी क्षमा देने में मदद करे, जिससे हमारे पारिवारिक जीवन के प्रेम में हमारे जीवन में बिखराव ना आए। श्रोताओं, सामुएल के पहले ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में हम अन्ना के गर्भवती होने और पुत्र प्रसव करने के उपरांत उसका ईश मंदिर में चढ़ाया जाना हमारे लिए हमारे परिवारों में ईश्वर से मिले वरदानों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करने का आह्वान करता है। याहवे ने अन्ना और एलकाना पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए उन्हें एक पुत्र रत्न प्रदान किया, क्योंकि वे ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं। अपनी इस श्रद्धा के कारण अन्ना अपने में की गई प्रतिज्ञा के अनुरूप सामुएल अर्थात ईश्वर से मांगे गए को ईश्वर की सेवा हेतु अर्पित करती है। श्रोताओं, आज के प्रथम पाठ के परिदृश्य में यदि हम अपने परिवारों पर चिंतन करें तो हम पाएंगे ईश्वर ने हम सबों को भी विभिन्न रूपों में कई अनमोल वरदानों से विभूषित किया है। हम किसी भी परिवार से क्यों न आते हों और चाहे हमारे परिवारों की पृष्ठभूमि अपने में कैसे भी क्यों ना हो, ईश्वर ने हमें अपने परिवार माता पिता के माध्यम यह जीवन दिया है, जिससे हम अपने जीवन में अपने कार्य और उत्तरदायित्वों के निर्वाहन द्वारा उनकी इच्छा को पूरा कर सकें और उनके राज्य की स्थापना हेतु भले कार्यों को पूरा कर सकें। इस भांति ईश्वर ने हमारे कुछ नहीं से भी हमें अपना सब कुछ दिया है, जिससे हम उनकी महिमा और स्तुति के गीत गा सकें, जैसे कि अन्ना ने किया। यह हमें अपने जीवन को देखने और इस पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर से मिले उपहारों की गिनती करने की मांग करता है। श्रोताओं, इस तथ्य को हमारे लिए संत योहन के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ घोषित करता है। ईश्वर ने हमें अपने विभिन्न वरदानों से इसलिए भर दिया है क्योंकि हम सभी उनकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सुधि ली है। एक माता पिता अपने संतानों के लिए जिस भांति चिंता करते और उनके लिए जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराते हैं, उसी भांति ईश्वर हम सबों के संग करते हैं। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर से मिले एक अंतःकरण की बात कहता है, जिसके माध्यम हम अपने जीवन में अच्छी और बुरी चीजों की सही परख करने के योग्य होते हैं। अपने अंतःकरण की आवाज सुनने के फलस्वरूप हम जिन कार्यों को करते जिसके द्वारा हम स्वयं को दोषी नहीं करार देते हैं, तो हमारा विश्वास और भरोसा में किया गया कार्य और प्रार्थना जीवनदाता ईश्वर के द्वारा सुनी जाती है और वे हमें उन चीजों को प्रदान करते हैं जिनकी मांग हम उनसे करते हैं। किसी भी मनुष्य के द्वारा अपने अंतःकरण की बातों को सुनना और उसके अनुरूप कार्य करना ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और इस तरह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा हम ईश्वर में और ईश्वर हमारे जीवन में निवास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने स्वरूप बनाते हुए हमें अपनी आत्मा प्रदान की है। श्रोताओं, इसी आत्मा से प्रेरित 12 बरस के यीशु को हम यरूशलेम मंदिर में अपने स्वर्गीय पिता के कार्य को पूरा करता हुआ सुनते हैं। वे अपने पिता के निवास ईश मंदिर में अपने माता पिता के अनजाने ही रुक जाते और उन कार्यों की शुरुआत करते हैं जिसके लिए वे भेजे गए थे। वे यूसुफ और मरियम को भी इसके बारे में कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि मैं अपने पिता के निवास उनके कार्यों को करता होऊंगा, लेकिन वे यीशु की बातों को नहीं समझ पाते हैं। श्रोताओं, यीशु का अपने पिता के घर में निवास करना, उनका हमारे हृदय रूपी मंदिर घर में निवास करने की बात को व्यक्त करता है, क्योंकि हम पिता ईश्वर की वे संतानें हैं जिन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त है और जिनमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। उस जीवन देने वाले आत्मा को अपने हृदय की गहराई में सुनना जीवन की सत्यता से हमें अवगत कराता है और इस भांति हम ना समझी और गलती करने से बचे रहते हैं। आइए हम ईश्वर की माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से विनती करें, जिससे हम नम्रता में उनकी बातों को अपने हृदय की गहराई में सुन सकें।
नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा, महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा, महान हो तुम शिशु राजा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज शनिवार 28 दिसंबर को कैथोलिक कलीसिया निर्दोष बालकों के शहादत का पर्व मनाती है। इन अबोध बच्चों ने मुंह से नहीं वरन मृत्यु से प्रभु ईश्वर का जय घोष किया। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर युद्ध, भूख और हर प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को याद करते हुए सभी विश्वासियों से उनकी रक्षा करने हेतु प्रेरित किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर संत पापा ने लिखा, आज निर्दोष बालकों के पर्व पर हम उन सभी छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं जो शोषण, भूख और युद्ध से पीड़ित हैं। प्रभु हमें उनकी रक्षा और सहायता करने में मदद करें। क्रिसमस का मौसम चरनी में पड़े बालक यीशु की वंदना करने और मनुष्य बने ईश्वर के रहस्य पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। संत पापा ने सभी विश्वासियों से जरूरतमंदों की मदद करने हेतु प्रेरित किया ताकि वे भी क्रिसमस मना सकें। संदेश में संत पापा ने लिखा, आइए हम इन दिनों में मनुष्य बने ईश्वर के रहस्य पर विचार करें और अपना कुछ त्याग करने की कृपा मांगे ताकि इसे जरूरतमंदों को दिया जा सके, ताकि हर कोई क्रिसमस की खुशी का अनुभव कर सके। हैशटैग क्रिसमस का मौसम। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 28 दिसंबर को झांसी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पीटर पैरापुलिल द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है और उसी धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष विल्फ्रेड ग्रेगोरी मोरास को नियुक्त किया है। संत पापा ने 11 मई 2024 को झांसी धर्म प्रांत के लिए सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में उनकी घोषणा की थी और 6 अगस्त 2024 को झांसी के CKC ग्राउंड में भारत और नेपाल के राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्ड जिरेले की उपस्थिति में आगरा के महाधर्माध्यक्ष राफी मंजली ने विल्फ्रेड ग्रेगोरी मोरास का धर्माध्यक्षीय अभिषेक किया था। और वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में संत पापा ने एस्टोनिया के तेलिन में यूरोपीय तेजे बैठक के प्रतिभागियों को संबोधित किया। संघर्ष और हिंसा के बीच थकान, संकट और चिंता पर काबू पाने के लिए साझा करने और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। संत पापा ने 2018 में बाल्टिक देशों की अपनी प्रेरिति की यात्रा और तेलिन में कार्ली के लूथरन गिरजाघर में युवाओं के साथ बैठक को याद किया। उस अवसर पर उन्होंने जीवन की गवाही साझा करने, हम जो सोचते हैं और चाहते हैं उसे व्यक्त करने के लिए एक साथ आने की सुंदरता को व्यक्त किया था। फ्रांस स्थित विश्वव्यापी क्रिस्तीय समुदाय के नेतृत्व में 47वीं बैठक साझाकरण और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है, जो उन महान परीक्षणों को देखते हुए और भी आवश्यक साबित होती है, जिनका सामना करने के लिए वैश्विक समुदाय को बुलाया जाता है। संत पापा फ्रांसिस हिंसा और युद्ध से प्रभावित कई देशों और प्रत्यक्ष परिणाम भुगतने वाले लोगों को याद करते हैं। आशा से परे आशा, वह संदेश है जो तेलिन में प्रतिध्वनित होता है। तेजे के संचालक ब्रदर मैथ्यू द्वारा चुनी गई एक थीम, जो हाल ही में उद्घाटन की गई जयंती की थीम से मेल खाती है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस 39वें विश्व दिवस के लिए अपने संदेश के एक अंश का हवाला दिया। आशा में चले, आशा हर थकान, हर संकट और हर चिंता पर काबू पाती है। हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत प्रेरणा देती है, क्योंकि यह एक उपहार है जो हमें स्वयं ईश्वर से मिलता है। वे हमारे समय को अर्थ से भर देते हैं, हमें मार्ग पर प्रबुद्ध करते हैं, हमें आशा दिलाते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं और जीवन का लक्ष्य हैं। अपने विश्वास के उपहार की रक्षा करें और प्रार्थना में सब कुछ यीशु को सौंप दे। ये दो अपील हैं जिसे संत पापा फ्रांसिस ने क्रिसमस से पहले 20 दिसंबर को बेतलहम विश्वविद्यालय के छात्रों को भेजे अपने संदेश में की। बेतलहम विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रदर हेक्टर हर्नान सैंटोस FSC को संबोधित करते हुए संत पापा ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को आध्यात्मिक निकटता की हार्दिक शुभकामनाएं भेजा और आगमन काल को मसीह के आगमन के लिए आनंदमय प्रतीक्षा की अवधि कहा। संत पापा ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये अवसर, जो नए जीवन, आशा और सामंजस्य का प्रतीक है, आप में से प्रत्येक को आध्यात्मिक नवीनीकरण और मसीह के आनंदमय शिष्य बनने की आपकी बुलाहट को मजबूत करने का अवसर प्रदान करे। मैं विश्वविद्यालय के युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने विश्वास के अनमोल उपहार की हमेशा रक्षा करें और इसे छिपाने वाली चीज के रूप में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने वाले खजाने के रूप में। हालांकि अपनी युवावस्था में आप कभी कभी कमजोर, भ्रमित या यहां तक कि निराश महसूस करते हैं, प्रार्थना में सब कुछ यीशु को सौंप दे, क्योंकि वे स्थायी आशा के स्रोत हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकाकुल परिवार, भारत सरकार और देश की जनता के लिए इस घड़ी में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उनका निधन 92 वर्ष की आयु में गुरुवार 26 दिसंबर को हुआ। गुरुवार शाम को तबीयत बिगड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मई 2004 से मई 2014 तक दो बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने 1990 के दशक में देश के वित्त मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था। भारत में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक प्रकट किया। यूएन कार्यालय ने सोशल मीडिया पर अपने एक संदेश में लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोगों के जीवन को बदला और विश्व में भारत की साख को मजबूती दी। अधिकारों से अर्थव्यवस्था तक संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर उन्होंने किसी को भी पीछे न छूटने देने का हर संभव प्रयास किया। यूएन कार्यालय ने शोक संतप्त परिवार व भारत की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।